پہلوؤں سے گفتگو کی جائے گی۔ موجودہ جو عالم اسلام میں ابھرے ہوئے حالات ہیں، جو جنگ کے ایک پھیلتے ہوئے حالات دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی صورتحال بعض دیگر خطوں میں بھی کسی حد تک پھیلتی جا رہی ہے، جیسا کہ روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے، اور اس میں شمالی کوریا کا روس کا اتحادی بننا، اور جنوبی کوریا کا امریکہ اور یوکرائن کی حمایت کو حاصل کرنا، یا جیسا کہ شمالی کوریا کا مزید اپنے میزائلوں کے نئے تجربات کرنا اور نئے میزائل ساخت کو میدان میں لے کے آنا، یہ ایک عالمی فضا کی طرف اشارہ ہے کہ عالمی فضا جو ہے وہ اس جنگ سے بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہی ہے، جو جنگی حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں۔ ہم ابھی اسرائیل اور فلسطین و لبنان کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اس کے پہلو سے انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو کریں گے، اور جو تازہ خبریں یوکرائن کے عنوان سے اور روس اور شمالی کوریا جنوبی کوریا کے مابین بعض حالات دکھائی دے رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں مد نظر رکھیں گے، کیونکہ ان دو بلاکس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک امریکہ اتحادی ہیں اور ایک رشیا اتحادی ممالک، اور ان کا کرے ارض کے اوپر، منظر عام کے اوپر آنا ہے، کیونکہ بالآخر جتنے بھی جنگی حالات ہوں اس میں بنیادی تقسیم حق اور باطل کی ہوتی ہے۔ بنیادی تقسیم جو ہے وہ اسلام اور اسلام سے ٹکرانے والی قوتوں کی ہوتی ہے، اور یہ بھی ماضی میں جس طرح سے مشاہدہ کیا گیا ہے، آج بھی یہ عنصر قابل مشاہدہ ہے۔ لیکن مدد کرنے والوں کے پیش نظر یا ان کے مقاصد ہرگز مدد کے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیش نظر اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، جنگوں میں شرکت کرنے والے تمام عناصر وہ اسلام اور راہ الہی کے اوپر اپنی زحمتوں اور اپنی خدمات کو دینے والے نہیں تھے، بلکہ بہت سے افراد اپنے مفادات کے لیے، وہ مفادات قبائلی صورت کے ہو سکتے ہیں، وہ مفادات شخصی ہو سکتے ہیں، وہ مفادات اقتصادی یا تجارتی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، یا بیلنس پاور یعنی طاقت کے توازن کی خاطر ہو سکتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے اوپر دوسرے قبیلے کی طاقت اجاگر نہ ہو جائے۔ مختلف ایسے مقاصد پیش نظر ہمیں تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ رہے ہیں۔ دور حاضر میں بھی جو عالم اسلام میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اس میں ہر معاون قوت اور طاقت وہ یکساں ہدف نہیں رکھتی، لہذا انہی میں سے بلا شک و شبہ حق اور باطل اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ دو لڑنے والے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان میں ایک راہ حق کے اوپر ہوتا ہے اور ایک باطل تقاضوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو حق کو آ کے پروموٹ کرتے ہیں، کمک کرتے ہیں، اسے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بھی اپنے پیچھے عناصر اور اپنے اہداف اور اغراض مقاصد ہیں۔ ہم ابھی آئیں اس کے اوپر تھوڑا غور کرتے ہیں کہ یہ جو دو ہمارے پاس طاقتیں آپس میں ٹکراؤ میں ہیں، تو اس میں کون ایسی طاقت ہے یا کون سا ایسا گروہ ہے کہ جو واضح طور پہ باطل ہے؟ شاید یہ سوال اس ٹائم بیجا ہو، کیونکہ اسرائیل اور صہیونیوں کی جو بربریت اور ظلم و ستم اور ایک دہشت گردی پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے، اس میں مسلم تو کیا، غیر مسلم کو بھی اس مسئلے میں شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد، ناجائز ریاست، اور اس دنیا کے اندر تاریخ بشریت کی ماضی کی تاریخ کو توڑ کے ایک بربریت و ظلم و ستم پھیلانے والا ملک ہے، ایک ناجائز ملک، ایک ناجائز ریاست، کہ جس کو اگر کسی نے قبول بھی کیا ہے تو سازشی طور پہ قبول کیا ہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا रियासत सकता कि वो कवी तरीन कुव्वत बन के पढ़ सके। इसलिए उसको दुनिया में जो पावर मालिक हैं उनका माने पे इत्तेहादी बनना पड़ता है, और वो बरतानिया और अमेरिका है। ये तो हम एक ज़ाहरी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मज़ीद दिक्कत में जाएं तो ये या बिला शक शुबा दुरुस्त तज्जिया है कि इस टाइम दुनिया भर में जो आलमी ताकतें हैं उन ताकतों के अंदर भी जो दर हकीकत लीड कर रहा है, जो दर हकीकत चला रहा है, या जिसका फैसला या जिसके अनासिर मुअसर हैं, वो ये सहयोनी हैं। सिर्फ यहूदी नहीं, सहयोनी हैं। सहयोनियों के हाथों में इस टाइम दुनिया की अस्करी क़ुव्वत और इकतसादी क़ुव्वत वो एक गर्दिश कर रही है। लिहाजा अमरीका में जो हालिया इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें बहरहाल जो भी पार्टी ऊपर आती है, हर दो पार्टी इसराइल की इंतहाई हिमायत याफ्ता हैं, यानी हिमायत करने वाली हैं। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इसराइल पीछे से इन सियासतदानों और सियासी पार्टीज़ को इतनी बड़ी रकम मुहैया करता है, अगरचे वो रकम भी उसने इन्हीं ज़राए से हासिल की होती है। अगर डॉलर्स इनमें से बरसरे इकतदार आने वाली पार्टी इसराइल को पहुँचाती है, इसराइल उसी में से एक बड़ा हिस्सा चंद बिलियन डॉलर जो है वो इनकी पार्टी पे खर्च कर देता है, और इससे वो सहयोनियों के एहसानमंद हो जाते हैं। लिहाजा दोनों जो पार्टियां इस टाइम अमेरिका में बरसरे इकतदार आने की कश्मकश में हैं और एक दूसरे को हराने के चक्रों में हैं, हर दो अपना सबसे मुस्बत और बड़ा काम जो आवाम के सामने पेश करना चाह रहे हैं वो इसराइल और सहयोनियों की हिमायत है। अब इस हिमायत से अवामी तो उनको शोहरत नहीं मिलती, अवामी उनको ताइद नहीं मिलती, क्योंकि अवामी सतह के ऊपर लोग अक्सर इसराइल से मुतनफ़र हो चुके हैं। जो इस टाइम अमेरिका के इकतसादी हालात चल रहे हैं, लोगों के अंदर जो एक फ़क्र और गुर्बत की शदीद लहर आई हुई है, ना अमनियत भरपूर बहुत सारे इलाके अमेरिका के हो चुके हैं, और ये बदलते अमेरिका के हालात ये एक वाज़े तौर पे अलामत बन रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में अमेरिका अपने इस तमान और क़ुव्वत के साथ मौजूद नहीं है। लिहाजा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बरसरे इकतदार आने वाले ये पार्टियाँ हैं, ट्रंप हो या उसके मुकाबले में जो पार्टी है, हर दो इसराइल की हिमायत इसलिए लेना चाहते हैं ताकि इनको इख्तदार में आने का मौका मिले। अमेरिका के इख्तदार में अमूमन वही अफराद आ पाते हैं सहयोनी, जिसकी भरपूर तौर पे ताईद और मदद करते हैं। अब आइंदा आने वाले हालात में अगर मुसलमान ये तफक्कुर रखें कि बिलफर्ज इनमें से एक ग्रोह आ गया तो वो मुमकिन है इसराइल को कोई सख्त वक्त दे, इसराइल के मफादात को कबूल ना करे, तो ये एक बेजा बात है, क्योंकि अमेरिका में जो भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो इसराइल नवाज़ होती है, सहयोनी नवाज़ होती है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि सहयोनियों की है, जिसके लिए उन्होंने जिसके नतीजे में वो फिर जब ये तो अमेरिकी जो एक सियासी कश्मकश उभरती चली जा रही है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप की पार्टी आ गई तो मुमकिन है, ट्रंप अगर शिकस्त खा गया तो मुमकिन है कि अंदर खाना जंगी की सूरत हाल हो जाए, क्योंकि वो असलन तस्लीम नहीं करना चाहता कि मेरे अलावा कोई और बरसरे इकतदार आए, और इसी की तरफ आस्ता आस्ता हालात बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये जो अब तर हालात हैं आवाम के अंदर शादी तनज़ुली पैदा हो चुकी है, हत्ता कहा जाता है कि जिस तरह पाकिस्तान और इस तरह के मालिक में खानाबदोश और झुग अफराद फुकरा गरीब हुए नहीं है जो अपने घर एहतमाम और रियासत सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो मजबूर होते हैं कि चंद चादरें लगा के पुलों के नीचे या किसी और बात करके जिंदगी बसा। ये सूरत हाल अमरीका की कई स्टेट में हो चुकी है। कई अमरीका ऐसी रियासतें हैं कि जिनके अंदर यही सूरत हाल इस टाइम उभर चुका है कि वहाँ पे पुलों के नीचे वो झुग्गियाँ लगा के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ना उनके लिए कोई और हल मौजूद है, और ऐसा खुद गरज है कि वहाँ दो आपस में मिलने वाले अफराद भी एक दूसरे के लिए नहीं देते, तो वहाँ पे ये बहुत बेटर है। कोई वेलफेयर जो मुख्तलिफ हैं वो आके बढ़कर अमेरिका में दीगर यूरोपीय मालिक में भी ये एहतजाज आस्ता आस्ता अंदरून खाना बढ़ते चले जा रहे हैं, जो इक्तसादी मसाइल के ऊपर एहतजाज करते हैं और अपनी बुनियादी बेसिक नीड्स बुनियादी ज़रूरियात को तलब कर रहे हैं। और यहाँ पे लोगों का अमूमन जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं उनका मुतालबा यही है कि सारा का सारा टैक्स हमारा है, फंडिंग हमारी है, माल हमारा है और ख़र्च इसराइल के ऊपर किया जाता है। आया अमेरिका का जो सदर है वो बाइडन या ट्रंप या आने वाला कोई और फर्द है या नेतन्याहू है? ये एक आम अवामी सवाल है कि जो वो पूरे मुल्क की सतह के ऊपर उभारते हैं कि असल कौन है सदर, इसको कौन चलाने वाला है इसको? क्योंकि इसराइल जो मालियत खर्च करता है वो मालियत उसके मुल्क से पैदा नहीं होती, ये बात मुसलमा बात है, बल्कि वो दुनिया भर में जो उसके अपने अनासिर हैं और वो जो उसके अपना एक तसल्लुत और इस्तेमारियत है उसके ज़रिए से वो पैसा वो हासिल करता है और असलाह लेता है। वाइल्ला इतनी बड़ी बड़ी असलाह के मुल्क में नहीं नस्ब हो सकती लग सकती कि जो असलाह वो इन जंगों में इस्तेमाल करता है। इसराइल को इस तरीके से बाकी रखने की बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि जो भी सुपर पावर है वो अपने इख्तदार को और अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए अपने से नीचे जो ममालिक हैं उनको ताकतवर होने से रोकती है। ये सियासत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक चल रही है और जब तक अदल व इंसाफ का पूरी दुनिया में राज नहीं होगा इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हाथों, उस वक्त तक ये सियासत और ये जालिम जो पॉलिटिक्स है रहेगी। और वो क्या है कि जो ताकत मुकाबले में किसी और रियासत को नहीं उभरने देता ताकत के लिए, जैसे ये फिर वाज़े तौर पे वो दहशतगर्दी के ऊपर उतरता है, ऐसे सिस्टम बनाता है कि इस्तेमार और इस्तेमार कर सके। इस्तेमार यानी ख़ुद से वो तामीर इसलिए करता है ताकि वो नशोनुमा ना पा सके, वो मुल्क जो है वो अपनी कुव्वत के साथ ना खड़ा हो सके। आलम इस्लाम के अंदर जो अनासिर मौजूद हैं बिला शक व शुबा वो इस वक्त दुनिया में आलमी कुव्वत बनने की सलाहियत रखते हैं। मसलन अगर एक उम्मत वाहिदा एक उम्मत का अगर तसव्वुर वो अमली हो जाए, क्योंकि तसव्वुर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनायत फरमाया, ये तो हमारे दीन का हिस्सा हमारे ईमान का हिस्सा है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर उस जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म वो तकलीफ़ एहसास करता है, पूरा जिस्म तकलीफ़ एहसास करता है। हाँ जिस्म के अज़ा अपनी जगह पे मुख्तलिफ तरह से तकसीम होते हैं लेकिन रब्त उन अज़ा का एक दूसरे के साथ इतना गहरा है कि एक को तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म को वो तकलीफ़ होती है। इस्तेमार ने सबसे पहले आके इस वहदत को तोड़ा है, अगर ये वहदत ना तोड़ता तो इस्तेमार अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता था, वो मुसलमानों की उभरी हुई क़ुव्वत को कुचल ही नहीं सकता, वो मुसलमानों के अंदर ज़ाफ़ को पैदा ही नहीं कर सकता अगर ये वहदत को ना तोड़े। लिहाजा वहदत को बुनियादी तौर पे दो तरीक़ों से तोड़ा गया है, एक मजहबी तनफ़ुर और तफरका फैला के और दूसरा कौमी तफरका फैला के। मसलन ये अरब है ये अजम है, इस टाइम जो हिजबुल्ला के ख़िलाफ़ बोलने वाले अल अरबिया चैनल के ऊपर रूहानी उलमा शिया उलमा बैठे हुए हैं, जैसे कि सैयद मोहम्मद हुसैनी है के एजेंट है मूसात का, या शेख हसन है वो भी इसी तरह से एक नौ एजेंट है। ये लोग जिसको उभार रहे हैं वो अरब और अजम का मसला है। मतलब वो ये बात बावर बार बार कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग में इसराइल से जब जीत ही नहीं सकते थे तो लुबनान को क्यों तबाह बर्बादी के दहाने पे लगा दिया। ईरान ख़ुद तो सालिम बैठा हुआ है, ईरान ख़ुद तो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लुबनानी ही मरने के लिए रह गए, लुबनान ही तबाह होने के लिए रह गया है। अगर इतना ही ये मसला था तो ईरान ख़ुद उधर आता, लुबनान को क्यों आगे करता है। लिहाजा वो फिर शहीद हसन नसरुल्लाह रज़वानुल्लाह ताला अलैह और फिर इन लोगों के ऊपर बदज़ुबानी और हमले करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा एक तबका बिठाया इसलिए गया कि वो कौमियत की बात करें, और ये हर जगह है। मतलब पाकिस्तान आ जाए तो इधर भी इसी तरह की शुभात खड़े किए गए हैं, और वो शुभात एक बड़ी हद तक हमारे इदारों में, अस्करी इदारों में बिलखसूस वो कामयाब भी हैं। मसलन ईरान सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान अपने मफाद रखता है, उसे होना चाहिए अपने मफाद के लिए पाकिस्तान काम करे। या इंडिया से ईरान के ताल्लुकात क्यों, इंडिया से क्यों तजारत करता है, इंडिया से क्यों मिलता है, अगर ये इतना ही दीन और ईमान के लिए आगे बढ़ के काम करने वाला है। यकीनन ये अंदर ही अंदर जो है ना वो गेम चलते हैं, और इनकी गेम में पाकिस्तान हद-ए-अक़ल आने वाला नहीं है। ईरान असल में पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, इसलिए उसने अब ये वो शुभात हैं जो आम फैले हुए अफराद हैं, फैले हुए अफराद के जहनों में फैले हुए ये शुभात हैं कि जो कौमियत के एहसास के ऊपर बर्पा किए गए हैं, कि ईरान ने बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौजें लगाई हुई हैं और वो बस इशारा मिलने की देर है कि हमला कर देगा, इसलिए इस इंडिया के बाद दूसरा बड़ा जिसे पाकिस्तान को सालमियत का डर है वो ईरान है। इस तरह के शुभात बड़े पैमाने पे उन्होंने उजागर किए हुए हैं। इस तरह की शुभात जो है वो आपको तहरीरों में, पेजेस में, गुफ्तगू में लोगों के साथ वो वाज़ह तौर पे मिल जाते हैं। लिहाजा ये शुभा अपनी जगह पे जानबूझ के पिलाया गया है इन्हीं अनासिर से, यानी वो अनासिर जो सैयद मोहम्मद हुसैनी जो मूसाद का एजेंट है और अल अरबिया सऊदी अरब के चैनल के ऊपर बैठ के हिजबुल्ला और कुव्वत मुकावमत इस्लामी व उम्मत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, वही प्लेटफॉर्म ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात में जहर उगलता है और उसको फिर पूरे के पूरे माशरे के अंदर सराइयत किया जाता है। और कितने सादा लोग ऐसे अफराद हैं कि जो इसका शिकार होते हैं। चंद तस्वीरें लगा दी जाएँ जिसमें मसलन बिलफर्ज मोदी के साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं, इंडिया के दौरे किए जा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं और इसको बहुत बड़े पैमाने पे प्रोपागेंडा करते हुए इस तरह के जुमलात के साथ जहनों को आलूदा किया जाता है। जबकि हम ये बात जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के मुशरिकीन से जंग की और वो मुसलमानों के दुश्मन थे तो तिजारत को मुनक़ते नहीं किया, क्योंकि तिजारत जो है वो माशरों की बका का एक बायस होती है। जंग मजबूरी की वजह से की जाती है, जंग अपनी रियासतों के तहफ्फुज़ की खातिर की जाती है, लिहाजा तिजारत इन्हीं दो रियासतों के तहफ्फुज़ का एक बायस बनती है। इसी तरीके से सूरह तौबा के आगाज़ में ये आयात कुरान करीम की नाजिल हुई हैं कि मुशरिकीन से जो मुआयदा तुमने किया है, हालांकि मुशरिकीन को अल्लाह ने हुक्म दिया कि 4 महीने हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ इधर से, मक्का और बैतुल्ला अब मुशरिकीन के लिए नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को वहाँ पर मुस्तस्ना करार दिया गया है, उन ग्रोहों को और उन अफराद को इस पूरे के पूरे हुक्म से जुदा करार दिया गया है कि जिनके साथ मुसलमानों के मुआहदे थे। लिहाजा अगर तजारती मुआहदे हो जाएं, अव्वल तजारती मुआहदे होना ये मोहब्बतों की अलामत नहीं होता, ये बल्कि रियासतों के अंदर माशरों और लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ज़रूरी अमर है, ये कभी भी तर्क नहीं किया जा सकता। नंबर दो, अगर ये मुआहदा हो जाए तो जितना भी ये खूनी जंगों का सिलसिला जारी रहे, दीन इस्लाम ने मना फरमाया है कि जो मुआहदा हो जाए उसे तुम तोड़ो, अगर वो नहीं तोड़ते तो, वो तोड़ते हैं तो फिर मसला नहीं है। ऐसा ये कोई दलील नहीं तिजारतें बन जाती कि इन दो ममालिक की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती है, इनके बड़ी मोहब्बत के सिलसिले जारी हैं और फलां फलां है, नहीं, माशरे मजबूर होते हैं कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरी रियासत से तजारती ताल्लुकात उस्तवार करके अपनी ज़रूरत को पूरा करें। लिहाजा इन प्रोपागेंडों का शिकार नहीं होना चाहिए। और आलमी सतह पर यकीनन अगर एक मुशरिक अबू जहल और अबू लहब आके वो मुसलमानों से अपने तजारती मुआहदों को पूरा करते हैं, तो जबकि वो मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं और तबर्रा कुरान ने किया है, तब भी कुरान कहता है कि औफू बिल अहद, कि इन अहद व पैमान को निभाओ जाके, इनके साथ भी मुआहदों को पूरा करो। लिहाजा अगर मुआहदा जन्म ले जाए उसे नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन कौमियत की असास के ऊपर ये अफगानी, ये ईरानी, ये हिंदी, ये बलोची, हत्ता पाकिस्तान के अंदर आ जाए, ईरान के अंदर भी इसी तरह, ये कुर्दी है, ये अरब है, ये फारस है, ये तुर्क है, ये लोर है, ये फलां फलां है, इस तरह से उन्होंने कौमियत के दोष के ऊपर खूब तकसीम किया है। ये तकसीम का अमल जब तक जन्म ना ले तब तक इस्तेमार इस्तेमारियत में कामयाब नहीं हो सकता। ये एक पहली चीज़। लेकिन इन सब उमूर को, क्योंकि इस्तेमारियत तो सिर्फ एक ज़िद को और कुव्वत को तोड़ने के लिए आगाज़ में बहाना चाहिए होता है, फिर आगे बुनियादी तनसीबात को, बुनियादी शख्सियात को और बुनियादी इदारों को वो खोखला किया जाता है या तबाह किया जाता है। इन सब उमूर के लिए कोई बड़ा ताकत का मंबा चाहिए। अगर उस सुपर पावर मुल्क के पास जो अपने इक्तदार को दुनिया भर में जमाए हुए है कोई कुव्वत का मंबा नहीं होगा, वो किस तरीके से अपनी इस्तेमारियत को बुरुए कार लाएगा और अमली तौर पर पूरी दुनिया के ऊपर अपना इक्तदार वो मुसल्लत करेगा। वो कुव्वत का मंबा इस टाइम अमरीका और अमरीका नवाज़ जो ममालिक हैं जैसे बरतानिया और यूरोपियन यूनियन, इन सब का बाहमी तौर पर कुव्वत का मंबा जिससे उसने खलीजी ममालिक और बिलखसूस उम्मत इस्लामिया को काबू किया हुआ है, वह इसराइल नामी एक नाजायज़ रियासत है। लिहाजा इस वजह से इसराइल को ये इस कदर बड़े पैमाने पर सपोर्ट करते हैं। अव्वल ये कि पूरा जो मनसूबा बनाया गया, मनसूबा बनाने वाले ही काबिज़ हैं अमरीकी इदारों के ऊपर, बुनियादी अमरीकी इदारों की जो शख्सियात हैं वो सही होनी ही हैं। और इसी तरीके से उनके ही ये बनाए हुए प्लान हैं कि वो जो कुव्वत का मंबा है वो किसको करार दिया जाए, किसको बनाया जाए। ये जो कुव्वत का मंबा इस टाइम है अमरीका के लिए वो इसराइल है। इसराइल की तबाही अमरीका की कुव्वत का आलमी सतह के ऊपर जो नफूज है उसके ऊपर एक इंतहाई गहरी ज़र्ब कि जिसको अमरीका बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अमरीकी कुव्वत उससे टूटती है, इसलिए वो इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका हर कीमत के ऊपर चाहेगा। इस टाइम जो हालात बन चुके हैं, हम हालिया सूरत के ऊपर आएँ और इसमें एक नुक्ता जिसके ऊपर इंशाल्लाह आइंदा भी गुफ्तगू रहेगी, चूँकि कुरान करीम ने इन सब उमूर को मुख्तलिफ़ आयात करीमा में ज़िक्र किया है और कामयाबी और नाकामी के असबाब का भी कुरान करीम ने तस्करा किया है। लेकिन उसकी तरफ अभी इंशाल्लाह ताला हम अपने बहस के अगले हिस्से में आते हैं। पहले ये ज़ाहरी तौर पे हमारे पास जो असबाब की एक चेन चलती है और उससे हम एक कवी एहतमाल लेते हुए निशानदही कर सकते हैं कि आइंदा क्या होगा, उसके एक हिस्से को मुकम्मल करें कि इस टाइम इसराइल की जो सूरत हाल बन चुकी है कि उसने अपने तौर पर अपनी तमाम की तमाम ताकत के ज़राए इस्तेमाल कर लिए। ईरान के ऊपर उसने अपने तौर पे हमला किया। यहाँ पे दो तज़ियात हमारे सामने चल रहे हैं, एक पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तज़िया है और एक ईरानी मीडिया के ऊपर हमें तबसरा दिखाई दे रहा है। इसराइल हमले को जुदागाना तौर पे मौजू बनाना चाहिए था, सिर्फ अभी इशारतन आपकी खिदमत में गुफ्तगू पेश की जा रही है। पाकिस्तान मीडिया के ऊपर जो खबर चल रही है या तज़िया निगार बैठे हुए हैं या हमारे उलमाए किराम भी उसको बयान कर रहे हैं, वो ये है कि इसराइल ने सिर्फ़ एक ही हमला किया है और उस हमले में उसकी अपने तौर पे भरपूर ताकत के साथ इसराइल ने हमला किया, लेकिन उस क्योंकि ईरान में कहा जा रहा है तीन लेयर्स में हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तान जो मीडिया बता रहा है और उसकी भी असास बरतानिया का साबिका इंटेलिजेंस ऑफिसर है अब पीछे क्या सदाकत है इसका इल्म नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ एंकर्स हैं, ख़बरें हैं, इसी तरह बाज़ उलमा के बयानात या उनके पेजेस पे चलने वाली मुख्तलिफ तजिया तहलील की सूरत में गुफ्तगू है, वो ये नक्शा खींचती है कि इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ है, इसराइल ने जो हमला किया है वो अपनी पूरी ताकत और भरपूर ज़ोर से उसने हमला किया, और उसके पेश नज़र एक बड़ी ईरान की मुख्तलिफ बेस, फौजी बेस के ऊपर तबाही मचाना थी। लेकिन ईरान का डिफेंस सिस्टम उनकी तवक्कुआत से कई गुना कवी निकला, और वो डिफेंस सिस्टम उनके सामने मुकम्मल अयां भी नहीं हो सका कि तमाम हमलों को लिया, तकरीबन तमाम हमलों को, और इसराइल को असलन इसकी को ही नहीं, तमाम के तमाम हमले उसके रुक जाएंगे क्योंकि उसने अपनी पूरी तवानाई और कुव्वत के साथ ये मुतालिया करेंगे कि कैसे उसने इन सब चीज़ों को डिफेंस कर डिफेंस किया, या सिक्योरिटी सिस्टम नीचे उनके पास ऐसा कवी मौजूद है कि इसराइल उसमें कामयाब नहीं हो सका। लेकिन खुलासा ये उन्होंने बताया होया कि आगहानी तो आया, इस तरह के सूरत हाल मौजूद है। ये तो बहरहाल तजिया था जो मीडिया पे किया जा रहा है, और इसमें एक खुशाइन चीज़ है और वो ये है कि एक उम्मीद इससे अवाम में और लोगों में पैदा होती है, ये बिलाशक शुबा इस हवाले से कि कुव्वत मुकावमत इस कदर कवी है कि सहयोनियों के किसी भी आमादा और तैयार भी है, और टेक्नोलॉजी के असास के ऊपर भी वो उनसे मुकाबला करने की भरपूर कुव्वत रखती है। लेकिन इस जगह पर एक और पहलू भी निकलता है कि बाज़ औक़ात उसको बड़े पैमाने पे दिखाया जाता है कि एक जगह एक जो है वो बेफिक्र हो जाए, एक रियासत या एक कुव्वत जो है वो बेफिक्र हो जाए, या ये भी हो सकता है क्योंकि ईरान के ऊपर अगर हमला इसराइल का कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की सरजमीन तो ना अमनियत के एतबार से कई गुना ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम जो हिजबुल्ला के हमले इसराइल में हुए हैं और पहले भी ऐसा हुआ है उसमें कई इंडियंस मारे गए हैं, इंडिया की बाकायदा फोर्स है कि जो वहाँ जाके इन सहयोनियों की हिमायत में लड़ रही है, और उनके आपस में मुआहदे भी इसी तरीके के हैं। बाल्फाज़े दीगर अगर कुर्रे अर्थ से इसराइल की रियासत मिट भी जाए तो यहू इन सहयोनियों की अगला मुल्क जो है वो इंडिया के पास रियासतें हैं और उसका पूरा अहतमाम है, और उन इलाकों के ऊपर खुद इंडियंस नहीं जाने की ताकत रखती है, उसके ऊपर एतराज़ क्या हक रखते हैं। लिहाजा इसराइल और सहयोनियों का एक मुतबादल अल्टरनेट वक्ती तौर पे, अगरचे वो दायमी नहीं हो सकता, वक्ती तौर पे मौजूद है, एक बड़ी आबादी को वो अपनी उसी शान शौकत के साथ मुंतकिल कर सकते हैं, इतने बड़े पैमाने पे इसराइल और इंडिया के आपस में गहरे रवाबित और ताल्लुकात हैं। लिहाजा अगर ईरान के ऊपर कोई भी आँच आती है तो उससे बिला शक व शुबा रियासत पाकिस्तान शदीद तरीन खतरात में घिर जाएगी, शदीद तरीन खतरात में। लिहाजा इस हवाले से भी एक इन तबसरों के ज़रिए से दुश्मन को पैगाम है कि सिर्फ ईरान जो है वो तनहा इस तौर पे नहीं है, ईरान के ऊपर हमला एक आलमी सतह पे जो जंग है उसमें कई रियासतों को शामिल होने और शरीक होने की तरफ दावत देने के मुतरादिफ बन सकता है। अलबत्ता ईरान के अंदर जो तबसरे चल रहे थे उन तबसरों के मुताबिक तीन लेयर्स में ये हमला हुआ। पहले को इन्होंने डिफेंड किया, लेकिन पहला जो इसराइल ने किया था वो सिर्फ इनकी ताकत को जानने के लिए था कि क्या इनका डिफेंस सिस्टम है और क्या इनके पास इमरजेंसी तौर पे इन हमले को रोकथाम के लिए इनकी टेक्निक्स हैं और वसाइल हैं। दूसरा हमला अपने तौर पे जानदार था, लेकिन दूसरा हमला भी असल में बेस फराहम करने के लिए था ताकि तीसरा हमला किया जा सके, लिहाजा वो उन्होंने बेस फराहम की और उलझाया उसमें, और फिर तीसरा हमला सुबह सवेरे 5 बजे के करीब उन्होंने किया, और ये पूरी रात 3 हमले चलते रहे, और जो तीसरा हमला था उससे ईरान को नुकसान भी हुआ क्योंकि ये छुपाने वाले चीज़ों की सियासत को ईरान नहीं खेलता। अगर कोई नुकसान हुआ है वाज़े तौर पे बताता है, और अगर कोई फतह हुई है और कोई कामयाबी हुई है उसे भी वाज़े तौर पे बताता है। ये इनकी तरह की शैतानत नहीं चलता, जो दुश्मन अपने तौर पे शैतानत चलता है, क्योंकि उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उभरता। यानी ये बात बताता है कि हम अपना नुकसान ज़ाहिर कर रहे हैं तो हम अंदर इस कदर अपने तौर पे कवी हैं कि जितना नुकसान भी हो जाए हम उसी तरह से शिद्दत के साथ, इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं। जैसा कि अभी गज़ा को उन्होंने मलबे का ढेर, 80 से 90% जो गज़ा है मलबे का ढेर बन चुका है, लेकिन उस उधर का छोटा छोटा बच्चा जो भूख से, तकलीफ़ से, ज़ख्मों से, और जो उसके घर बार और अपना सरमाया ज़िंदगी यानी वालिदैन वगैरह छिन चुके हैं, इसके बावजूद जब इस मसले के ऊपर आता है तो आपको बाहौसला नज़र आता है, आपको साबिर नज़र आता है, आपको जीदार और जुर्रत और शुजात से मौक़िफ़ देते हुए नज़र आता है कि हम इस जगह पे शिकस्त खुर्दा नहीं है, हम मर तो सकते हैं लेकिन सहयोगियों को बर्दाश्त करने के लिए आमादा नहीं है। तो ईरान ने कुछ पेश भी किया, उनके ऑफिशियल जो टीवी हैं और शबके मुख्तलिफ खबरनामों के शबके, शबके शिश है या अल आलम है या इस तरह से दीगर के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं, उसके ऊपर ये चलता भी रहा है कि 4 या 6 बंदे शहीद भी हुए हैं और उनके बाकायदा मरासम भी ईरान के अंदर हुए और उनके कई रिडार्स उसे नुकसान भी पहुंचा है। कुछ फौजी तनसीबात के हवाले से भी बड़ा हल्का फुल्का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसराइल के हमले को उन्होंने नाकाम बना दिया। इसराइल जो तवक्को कर रहा था वो उससे कई गुना ज़्यादा ईरान कवी उनके सामने निकला है, लिहाजा अब ईरान एक मोहलत लेना चाहता है, इसराइल एक मोहलत लेना चाहता है, चूँकि वो अपने तौर पे तो एक हमला कर चुका है और ईरान ने पहले से ये बात बयान की थी और ईरानी मुख्तलिफ मीडियाज़ के ऊपर यही बात मुसलसल चलती रही कबल इसके कि किसी की शहादत या किसी नुकसान की ईरान खबर देता। जो पहली चीज़ ईरानी मीडिया के ऊपर मुसलसल चली, सोशल मीडिया पे अलबत्ता, और वो भी इनके सिपाह की तरफ से या अर्तिश फौज की तरफ से, वो ये बयान था कि हमने पहले इसराइल को अलर्ट किया था कि अगर उसने छोटी सी भी कोई ऐसी खता की, हमले की, तो हम उसको वादे सादिक़े से, यानी चूंकि वो एक सिलसिला चलाते हैं ये ईरान का, इनकलाब इस्लामी के बाद जो जंगें हुई थी तब से यह रविश चल रही है कि वो अपने एक मिशन को 10 तक तो हतमन पहुंचाते हैं, 1, 2, 3, 4, मसलन अल-फजर 1, अल-फजर 2, अल-फजर 3। अब यहाँ पे वादु सादिक, यानी जो हमने कहा है, वाद किया है, जो आपको हमने कौल या ज़ुबान दी थी, असादिक यानी उसको हतमन व हतमन सच्चा करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम सच्चा करने की ताकत नहीं रखते तो ये ज़ुबान भी ना हम बोलते। यानी ये धमकाने के लिए, डराने के लिए, रोब बिठाने के लिए ज़ुबान नहीं है, चूँकि ताकत इतनी रखते हैं इस वजह से ये ज़ुबान हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे सादिक करके दिखाएंगे। लिहाजा वादु सादिक का ये मतलब है कि हमने जो वादा किया है वो सच्चा करके हमने दिखाया है और दिखाएंगे भी। इसलिए वादु सादिक 1, वादु सादिक 2 और वादु सादिक से, ये 3 के इंतज़ार में हैं कि एक मुनासिब वक्त के ऊपर इसराइल पे हमला करेंगे और इनके जो ऊपर अफवाज के जो सरबराहान हैं उनका ये कहना है कि अब ऐसा हम हमला करेंगे जिस पे वो अंगुश बेदंदान हो के रह जाएंगे। होता ना कि ताजुब के तो इस कदर गहरा ताजुब होता है कि इंसान अपनी उंगली ही दांतों में दे बैठता है, अंगुश बेदंदान, यानी वो इस कदर ताजुबावर, दुनिया भर के लिए ताजुबावर होगा कि जो अब हम हमला करेंगे। तो लिहाजा आपने मुलाहजा किया कि इसराइल यहाँ पे हकीकी माना में शिकस्त खुर्दा हो चुका है, यानी एक ऐसे वहशी दरिंदा भेड़िए की मानिंद है कि जिसको इतने ज़ख्म लग चुके हैं कि वो मज़ीद अब आगे बढ़ने की कुदरत और ताकत फ़िलहाल नहीं रखता, मगर ये कि उसके ज़ख्म मुंदमिल हो जाएं, वो इतनी फुर्सत ले ले, वो इतना ज़मान और वक्त ले ले कि उसके ज़ख्म फिर भरें और वो दोबारा से अपने जो दुश्मन है के लिए आमादा होकर मैदान में उतरे। क्योंकि इसराइल दर हकीकत अमेरिका को इस जंग में घसीटना चाहता है। अभी तक जो वो जंग लड़ रहा है वो अमेरिकी इमदाद है असलहे की सूरत में और दीगर जगहों से दीगर सूरतों में, और ये जो उसे इमदाद मिल रही है तुर्की हो, मिस्र हो, सऊदी अरब, कतर, कतर नहीं, अरब अमारात वगैरह, चूँकि कतर की हमास के साथ एक बहुत बड़ी वाबस्तगी एक अरसा दराज से मौजूद है। तो खुलासे कलाम के इन जगहों के ऊपर उसे जो इमदाद मिल रही है वो अभी इमदाद की हद तक है, लेकिन वो पूरे अस्करी फौजी पूरे एक प्रोटोकॉल के साथ जंग में घसीटना चाहता है। लेकिन अमेरिका अपने अंदरूनी हालात की वजह से जंग में आने से कतरा रहा है। उन हालात में पहली जो उसके लिए मुश्किल अमेरिका के लिए खड़ी होती है वो इसका ये सियासी बहरान है कि जो इस टाइम अमेरिका के अंदर खड़ा है, और जब तक एक पार्टी आके स्टेबल नहीं होती ये बहरान अपनी जगह शिद्दत के साथ कायम रहेगा, क्योंकि इस बहरान में अगर अमेरिका ने कोई और कदम उठाया तो अंदर खाना जंगी के शदीद खतरात अमेरिका के अंदर बढ़ जाएंगे। दूसरा, अमेरिका को जो अवामी मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है कि माजी में इससे पहले इतने बड़े पैमाने पे अमेरिका को मुखालिफत का सामना नहीं करना पड़ा, इसने बहुत मुश्किल में अमेरिका को डाल दिया कि वो अमली तौर पे सहयोगियों का साथ देते हुए इस जंग में कूद पड़े, क्योंकि बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं और लोगों की ज़बानों पे ये जुमला है कि अमेरिका का असल रईस कौन है, नेथन्याहू है या अमेरिका का प्रेसिडेंट है? चलती तो सारी उसकी है, पैसा तो सारा उधर जाता है और सारे उसी के मफादात को देख के अमेरिका अपने आप को दांव पे लगाता है, तो कौन है जो अमेरिका के ऊपर अभी हुकूमत कर रहा है? लिहाजा ये जो एक बदज़नी इसराइल के ख़िलाफ़ अमेरिका की आवाम के अंदर फैली है और मुजाहरे हुए हैं, उसकी वजह से अमेरिका फौरन जंग में कूदने के लिए फ़िलहाल आमादा नज़र नहीं आता। तीसरी सूरत, जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने जारी की है और उससे हर इंसान जो एक उसका मंज़र देखता है तो कई घंटों तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला रहता है, उसने इंतहाई बड़े पैमाने पे लोगों को अपने से मुतनफ़र कर दिया कि जो लोग उसकी किसी भी लिहाज से, ज़ुबान के अतबार से, मौक़िफ़ के अतबार से, माल के अतबार से तायद करते थे, वो इस टाइम उसकी बरमला तौर पे मुखालिफत कर रहे हैं और अपने आप को गिरफ्तारी देने के लिए आमादा कर लेते हैं, लेकिन इसराइल की हिमायत में आमादा नहीं हो रहे। लिहाजा अमरीका भी कतरा रहा है और इसराइल चाहता है कि अमेरिका जल्द जंग में कूदे, क्योंकि अमेरिका के कूदने के बगैर इसराइल किसी भी सूरत में फतह याब नहीं हो सकता, और अभी के हालात तकाजा करते हैं कि अमेरिका जंग के अंदर कदम ना रखे। इसलिए अगर अभी अमेरिका ने कदम रखा तो बहुत मुंह की खाने अमेरिका को पड़ेगी। इसलिए अब इसराइल इस टाइम फुर्सत लेना चाहेगा, ज़ाहरी तौर पर एक जंगबंदी की तरफ आना चाहेगा। एक जंगबंदी की वजह उसके मुकाबले में दुश्मन का कवी होना, यानी कुव्वत मुकावमत का अपने तौर पे तमाम शदीद ज़रबों और तमाम शदीद हमलों के बावजूद अपने आप को स्टेबल रखने, अपने आप को मोहकम रखने और इसराइल का डट के मुकाबला करना। इसने इसराइल को बहुत बड़े पैमाने पे परेशान कर दिया। अमेरिका का खुद मैदानी जंग के अंदर शामिल ना होना, इसकी वजह से इसराइल एक बहुत बड़ा खला महसूस कर रहा है। लिहाजा वो जल्द जंग बंदी की तरफ आस्ता आस्ता आएगा और कोशिश करेगा कि उसकी शरायत के ऊपर जंग बंदी हो। दूसरी तरफ कुव्वत मुकावमत का जो मौक़िफ़ ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रहा है वो जंग बंदी शुरू दिन से ही चाहते हैं, क्योंकि दीन इस्लाम में वाज़े तौर पर आयात करीमा से भी ज़ाहिर होता है और अहादीस और सीरत से भी जंग मजबूरी का नाम है। लिहाजा हमास ने भी कई दफ़ा ये मौक़िफ़ दिया है, हिज़्बुल्लाह का मौक़िफ़ है, रहबरे मौज़म ये बात कर चुके हैं और अपने तौर पे आलमी सतह पे कोशिशें कर रहे हैं कि जंग बंदी हो, जंग जल्द से जल्द बंद हो, लेकिन क़ुव्वत मुकावमत की शरायत पे, हमास की शरायत पर, इसराइल की शरायत के ऊपर कतन व कतन वो जंग बंदी की, असलन जंग बंदी की पर राज़ी नहीं है। इसलिए अभी भी जो ताज़ा बयानात जारी हुए हैं हिज़्बुल्लाह की तरफ से और हमास की तरफ से, उन ख़बरों से वाज़े तौर पे पता लगता है कि अपने मौक़िफ़ की और अपने शरायत के ऊपर इसराइल से जंग बंदी के लिए आमादा है। मसलन हमास ने ये शर्त रखी है कि इसराइल जो है ये सहयोगी वो पूरे गज़ा के अंदर से भी इनखिला करें और गज़ा की पट्टी से बाहर चले जाएँ, जब तक वो गजा की पट्टी से बाहर नहीं जाते जंग ख़त्म नहीं होगी। नंबर दो, जंग आर्जी तौर पर बंद कबूल नहीं है, मुस्तकिल असास के ऊपर जंग बंद होनी चाहिए, यानी दोबारा से जंग शुरू ना हो। अगर चंद महीनों के लिए होनी है, चंद दिनों के लिए होनी है, तो कोई हम जंग बंदी के लिए आमादा नहीं है। इसी तरह से हिजबुल्ला की अपनी शरायत हैं, ये तो बहरहाल अभी मोटी मोटी शरायत हैं, ऑफिशियली शरायत नहीं है, चूँकि जब ये जंग बंदी का अमल अपनी कानूनी सतह के ऊपर अंजाम पाएगा तो असल शरायत उसी वक्त हमारे सामने आएंगी। लेकिन ये वो शरायत हैं कि जो मौक़िफ़ वो अपने रस्मी बयानात में देते हैं और वो ख़बरों के दायरे में आ जाते हैं, उससे ये हमें ये मालूम होता है। लिहाजा इसराइल एक ऐसा शिकस्त खुर्दा वहशी दरिंदा भेड़िए की मानिंद है, या रहम की ताबीर के मुताबिक एक दीवाने कुत्ते की हैसियत अख्तियार कर चुका है कि जो कई ज़ख़म खाने की वजह से पीछे हटने पर अभी मजबूर हुआ है। और यहाँ पर हिजबुल्ला के जो क़ियादत, आला सतह की क़ियादत, जिसने इस्लाम के इन 1400 सालों में नई तारीख वाकई रकम की है, तारीख आज के दौर के बाद सैयद हसन नसरुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और ऐसे दीगर पाकीज़ा कायदीन के चेहरों के साथ जो पहचानी, पहले हमें इसकी नज़ीर नहीं मिलती। लिहाजा ये एक नई बशरियत के अंदर तारीख वारिद हुई है कि जिसमें खालिस इस्लामी नज़रिए की वजह से अपने पूरे के पूरे वजूद को अल्लाह सुबहान व तआला की बारगाह में कुर्बान कर देना। और वो नज़रिया क्या है कि बात के मुकाबले में हक और मज़लूम का साथ देते हुए एक उम्मत के नज़रिए के तहत जंग के अंदर वारिद हो जाना। लिहाजा यहाँ पर आपने मुलाहिज़ा किया कि अजीम क़ियादत का नुकसान आलम इस्लाम बिलखसूस आलम तशय्यो और कुव्वत मुकावमत ने उठाया, एक लगन के कदमों में नहीं आई इस नुकसान की वजह से, इतनी अंदर से ये अपने ज़मीन के अंदर इतनी मोहकम है कि ज़रबात तो इसराइल को लग रहे थे उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। इसराइल अपने तौर पे लुबनान के बॉर्डर के ऊपर एक बड़े लोगों की फौज और लश्कर था कि अब ये जो ज़रबा इन्हें क़ियादत की सूरत में मिला है इससे इनके हौसले बैठ गए होंगे और एक मुल्क के अंदर नाअमनियत की फ़जा कायम हो, फिर जिंदा होंगे, क्योंकि लुबनान के आबादी जिनमें सबसे बड़ी और इसी कोशिश इन हिब वालों को हिजबुल्लाह उठा दिया जाए, हत्ता कि शियों को उठा दिया जाए। जैसे अल अरबिया पे बैठा तौर पे मामा पोश शिया आलिम है, लेकिन इसराइल और सहूनी नवाज मोसाद का एजेंट, खाइन आलम इस्लाम का, यानी एक मुनाफिक इंसान वहां पे बैठ के लोगों को गुमराह कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कुव्वत मुकावमत अपनी जगह से एक जर्रा पीछे नहीं हटी और उनको अंदर नहीं आने दिया। अगर किसी चंद कदम अंदर भी इसराइल आया है वो स्ट्रेटजी के तहत है हिजबुल्ला की, और बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। और कल के और आज के जो दिन जो हमले हिजबुल्ला के हुए हैं, अभी तक इतनी बड़ी तादाद में एक हमले में इतने सहूनी नहीं मारे गए, जिनमें चार या पाँच गैर मुल्की हैं, उनमें इंडियन भी है और शायद यूरोपीय ममालिक के भी कोई शामिल हों। तो ये हमारे पास बात आती है कि ये हमले शदीद से शदीदतर होते चले जाएंगे और हमास अपने तौर पे फिर एक एनर्जी और ताकत को पकड़ रही है और ये सहूनी आए दिन ज़ाफ का शिकार होते चले जा रहे हैं, और हिजबुल्लाह की तरफ से आस्ता आस्ता ये रुख देखने को मिल रहा है। और कुछ बयानात भी ऐसे हैं कि चूँकि पूरी आबादी इसराइल की, एक तो वह काबिज़ है सवाए उन मकामी अफराद के जो सालों से इधर के बाशिंदे हैं, नंबर दो कि इसराइल की जो पसपाई है, अगर उसके लिए इनके जो अड्डे हैं या इनके जो मराकज़ हैं सहूनियों के, वो आबादियों में हैं, तो इन आबादियों की तरफ भी अब उनके मिसाइल आस्ता आस्ता रुख करेंगे। लिहाजा जैसे कि अभी जो कल के बाद सहूनी मारे गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि दो बाप बेटे हैं कि जो किसान हैं और सैहूनी वो वहाँ पे बागात में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की आड़ में ये फौजी हजरात मौजूद हैं, उन्हीं की आड़ में ये सारी तनसीबात हैं, तो उसके जद में ये लोग आते हैं। इसलिए उन्होंने होशियार किया है आबादियों को कि वो इन जगहों से दूर चले जाएं। यानी पहले भी ऐलानात करते रहे हैं, दोबारा ये ऐलान किया और हिजबुल्ला ने शिद्दत से मना कर दिया कि शमाल इसराइल की तरफ दोबारा लौट के ना आए। अगर वो लौट के आते हैं और उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है, वो खुद उस नुकसान के वो जिम्मेदार होंगे। तो ये हमारे पास सूरत हाल अभी बता रही है कि ज़ाहरी तौर पे इसराइल वो जंग बंदी की तरफ मजबूरन आता चला जाएगा। अपने तौर पे एक फुर्सत लेना चाहता है कि अमेरिका में इलेक्शन हो जाए और वहाँ पे एक सियासी सूरत हाल बहाल हो जाए, और नंबर दो वो अपने रिसोर्सेज को फिर जमा करे, और नंबर तीन क़ुव्वत मुकावमत का सही अंदाज़ा लगाए कि ये क्या क़ुव्वत रखते हैं, क्योंकि हिजबुल्ला ने कल और आज नए मिसाइलों का तजर्बा उनके सामने किया और उनकी खबर में नहीं थे कि इस नौीयत के भी मिसाइल हिजबुल्ला के पास हैं। तो ये हमारे पास एक उभरते हुए सूरत जो बन रही है उससे इसराइल के खात्मे की तरफ एक वाज़े फ़ज़ा का जाना दिखाई देता है। मगर ये कि अब आइंदा आने वाले हालात वो क्या करवट बदलें और उसमें कितनी उसे मज़ीद ज़िंदगी की मोहलत मुयस्सर आ जाती है, क्योंकि इसराइल का अपना वजूद वो जिन असबाब की वजह से बना है उसमें अहम तरीन सबब मुसलमान ममालिक का आपस में इंतशार है, कौमियत के मसाइल हैं वहदत इस्लामी की बजाय, तफरकाबाजी है शिया सुन्नी की। लिहाजा वो दोबारा से इस फ़ज़ा को उभारने जाए। जैसे पाड़ा चिनार के रास्ते ना अमन हैं, वो नहीं खुलेंगे उस वक्त तक जब तक ये जंग बंदी नहीं होती, क्योंकि जो ये सरजमीन से पाकिज़ा तरीन जवानान पहले हरम अहले बैत अलैहिस्सलाम के दिफा के लिए अपनी खिदमात दे चुके हैं, इसराइल इससे कामिलन बाखबर है। इसलिए इसराइल ही का मंसूबा था दाइश और तालिबान की, उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। इसी तरीके से ये जो मौजूदा अभी मंसूबा उसने जारी किया है और जंग है, लिहाजा उसे सबसे ज़्यादा खौफ और डर इसी सरजमीन से है कि दोबारा से यहाँ से किसी भी किस्म के चंद जवानान जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ सीना सपर होकर उम्मत इस्लामिया के दिफा के लिए अपने आप को पेश ना कर दें। लिहाजा वो उन तमाम इलाकों में इसराइल नाअमन हालात को बरपा करेगा कि जहाँ से उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की क़ुव्वत के उभरने का इहतमाल या अंदेशा दिया जा सकता है। अगर इहतमाल भी है या अंदेशा है कि इधर से ताकत मुयसर आ सकती है, वहाँ पर इसराइल नहीं चाहेगा कि वहाँ से ताकत मिले। वो भरभसा तमाम अपने ज़राए इस्तेमाल करके उस जगह को नामन करेगा, रास्ते बंद करेगा, मुश्किलात खड़ी करेगा। लेकिन मकरू व मकर अल्लाह, अल्लाह सुबहान तआला की जो तदबीर है वही गालिब आने वाली है। यहाँ पे एक अंसर वहदत हमारे सामने बिला शक व शुबा है कि अभी उसको मौजू नहीं करार देना मकसूद, लेकिन जंग बंदी हो तो इसराइल ने अगला काम यही करना है, ईमानी तौर पे आलम इस्लाम को ज़ाफ़ का शिकार करना, अखलाकी बहरा रवि फैलाना और वहदत के क़याम को पारा पारा करना। इसलिए वो उन इदारों को, उन शख्सियात को और उन तमाम मनाबे को ख़त्म करता है कि जो इन उमूर में वहदत को तकवीत देते हैं। इसलिए पाकिस्तान में आप देखेंगे जो वहदत की बात भरमला तौर पे करे उसकी शख्सियत कुशी की जाएगी, उसे गालिब गलोच का निशाना बनाया जाएगा, उसकी शख्सियत को तमस्खुर करके मस्ख करके पेश किया जाएगा ताकि ना लोग इसकी बात सुने ना इसके साथ जुड़ें। इसलिए उन प्रोग्रामों को बड़ा कम रंग करके दिखाने की कोशिश की जाएगी जो वहदत की असास के ऊपर बरपा हो रहे हैं, तफरकाबाजी को उजागर करने की बार बार कोशिश की जाएगी। खुलासे कलाम हम एक और पहलू की तरफ आते हैं, और ये पहलू चूँकि ईरान के हालात के पेश नज़र है और यहाँ पे फ़िक्री तौर पे जो अमूमन इकदाम किए जाते हैं रहबर मौज़म की खसूसी नज़ारत की सूरत में हैं। इस टाइम इतना नुकसान दुश्मन की तरफ से मिज़ाइलों ने नहीं पहुँचाया और इमारतों के गिरने ने नहीं पहुँचाया जितना नुकसान प्रोपेगेंडा पहुँचा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं है, तारीख़ में हमेशा ये होता रहा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत जो फ़ातह बद्रो खैबरो खंदक हैं, वो अजीम तरीन शख्सियत जंगे सिफीन के अंदर हुकूमत के ऊपर फाइज इक्तदार हाथ में लश्कर फौज का इस्लामी रियासत की सूरत में उनके दस्ते मुबारक में था। लेकिन इस प्रोपेगेंडा ने इस्लामी लश्कर को इस तरह से मुंतशर किया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। यानी अगर प्रोपेगेंडा असर अंदाज हो जाए तो अली इब्न अबी तालिब जैसी शख्सियत जो फातह बद्र खैबर व खंदक हैं, इस जैसी शख्सियत को भी गम और दुख और हुज्न का शिकार होना पड़ता है। यहाँ तक कि वो अपनों के दरमियान दाराखिलाफा के अंदर अल्लाह सुबहान व तआला के घर में मस्जिद में नमाज की हालत में शहीद कर दी जाती है। यहाँ तक दुश्मन की रसाई हो जाती है, प्रोपेगेंडा इतना असरअंदाज होता है। जो तलवारें चलती हैं और जो बम गिरते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचते, वो इस तरह से मुकावमत और मुबारजे नहीं करते, बिलाखिर गर्दनें कटती हैं, बदन गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जगह कायम रहे, दुश्मन अपनी वसी और अरीज फौज के हमरा भी वो कामयाबी से नार नहीं होता। लेकिन अगर प्रोपेगेंडे वो कामयाब हैं, क्या निकलता है कि तीन हस्ती पूरे एक बड़ी तादाद क्यादत रही हो तो ये लश्कर है से टूट हो जाता है और रात की मानिंद आपको, यानी वो जो सीसा पिलाई हुई दीवार बनना चाहिए था वो रेत की दीवार फिर साबित होती है। यानी वो कौन है कि जो सीसा पिलाई हुई दीवार को रेत के जर्रा गर्म बना देता है और बेअसर बना देता है? प्रोपेगेंडा। कुरान करीम आया कि जुम्मे के जो खुतबात और नमाज जुम्मा के बाद मुख्तलिफ तरह के फरहंगी और कल्चरल उमूर अंजाम दिए जाते हैं, उनमें से सीरती मौजूदात के ऊपर बास तहरीरों को तकसीम भी किया जाता है। उनमें से एक बड़ी खूबसूरत और जानदार एक तहरीर है, खबरनामे की अंदाज़ में उन्होंने उसको ये, यानी जैसे अखबार का एक सफ़ा होता है, और उसमें उन्होंने मुर्जफून का तस्करा किया। अगरचे कुरान करीम में माशरे के अनासिर के एतबार से मुख्तलिफ तबकात का तस्करा है, एक तोलानी टॉपिक है कि जिसकी फुर्सत की गुंजाइश अभी हमारे पास नहीं है, और मुर्जफून के ऊपर अगले दर्स में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने इस तस्करा तफसीली तौर पर करें। चूँकि एक वो लोगों के आपस के रवाबित से जन्म लेता है, अलबत्ता हर किस्म का रबता नहीं, रबतों का आगाज़ ज़रूरी ज़िंदगी की असास के ऊपर जन्म लेता है, लेकिन फिर रस्मवाद और आपस में जो मुख्तलिफ तरह के कल्चरल उमूर अंजाम पाते हैं वो एक गहरा आपस में कर देते हैं। अच्छा, इसके नतीजे में चूँकि वैसे ग्रोही सूरत में, लेकिन यही हैं अज्जा बन जाते हैं माशरे के, और इन अज्जा में जो एक आपस में कायम होता है, आगाज़ में किससे होता है? ज़रूरत ज़िंदगी से। मसलन दुकानदार को इससे गरज है कि उसकी चीज़ें बिकनी चाहिए, ग्राहक को चाहिए कि वो चीज़ें लेके अपने घर इस्तेमाल करें, लिहाजा ये दोनों आपस में ताल्लुक़ कायम करेंगे। मंडी में जाएंगे और मंडी खेतों से चीज़ों को लेगी, फैक्ट्री से चीज़ों को लेगी और लोगों तक पहुँचाएगी। ये ज़रूरत ज़िंदगी के तहत सारे के सारे उमूर कहलाते हैं, आगाज़ से माशरों का होता है। लेकिन इनमें ताल्लुक़ कैसे कायम होना शुरू होता है कि खुद ब खुद कुछ इनमें जन्म ले लेते हैं, कुछ रस्म व रवाज जन्म ले लेते हैं, कुछ कल्चरल उमूर इनके अंदर फरहंग जन्म ले लेते हैं, जिनको इन वो में अंजाम देना लाजिम और ज़रूरी समझते हैं। जैसे शादी के फंक्शन में ख़ास रस्में के मौरिद ख़ास और रस्में, ये अंजाम पा होता है, और कबाइल के भी एक दोनों में जो भी मरे हों हैं, अगरचे खानदान का भी इख्तिताम फर्द पर होता है, लेकिन माशरे के लिए जो फर्द करार है वो एक फैमिली है, वो एक खानदान है। यहाँ पर अगर आप मुलाहिजा करें तो खानदानों के अफराद से मिलके फिर दूसरे मरहले में छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, इन ग्रोहों की तासीर माशरे की तबाही में और माशरे की कामयाबी में बहुत बड़ी है। यानी दो दोस्तों की, तीन दोस्तों की, चार दोस्तों की आप ग्रोह, या हम फिकर चंद अफराद का इकट्ठे हो जाना और एक अमल ऐसा अंजाम देना जो माशरे के ऊपर असर अंदाज होता है। इस जगह पर एक तबका है मुर्जफून। मुर्जफून किसे कहते हैं? अरबी में ये रजफुन से है, क्योंकि कुरान करीम में ये कलेमा मुर्जफून तो एक दफ़ा आया और रजफा तो कई जगह आया। क्या होता है लुगत में? लुगत में रजफुन कहते हैं शदीद इस्तेराब को। रजफुन एक शदीद इस्तेराब को कहते हैं, जैसा कि मौजमुल मकाईस से लुगह में जिक्र किया गया है कि यदुल्लु अला इस्तेराबिन, जैसा कि ज़मीन के ऊपर सख्त एक जलजिला बरपा होता है तो इसे कहते हैं क्या? शदीद इस्तेराब। या इसी तरीके से हवाएं जो हैं हर चीज़ को आगे बढ़कर, इसको कहते हैं इस्तेराब का बरपा करना। पानी से सुनामी तूफान आते हैं, इसे कहते हैं इस्तेराब। जो चीज़ भी इस्तेराब की सूरत इख्तियार कर ले उसको जाता है खातून। लेकिन मुफ्तदा इसका माना अल इस्तराब शदीद जिक्र किया है, जैसे कुरान होता है यौम तरजफ राजिफा, तो जिस दिन इस शिद्दत इस्तराब फिर राजिफा जिम की ऊपर यौम तर वल जिबाल, सूरह मुज़म्मिल में कि और जो है जिस दिन वो कर देंगे। तो सूरह आराफ आयत नंबर 78 में है, में एक शदीद हर चीज को धर्म भरम करके, इस तरह यानी धर्म भरम करके रख देने वाली तक। तो उन किसे कहते हैं? जो धर्म कर दे, इस्तराब में डाल दे, यानी ठहराव दे। माशरों के अंदर होते हैं कि इस्तराब को जन्म देते हैं और सुकून को धर्म करके रख देते हैं। इन अनासिर को क्या कहते हैं? मुर्जफून। जैसे मादी, अगर आप मादी कायनात में करने वाली और इस्तेराब बरपा करने वाली चीज़ है जो उसके ठहराव को, उसके बका को वो धर्म भरम कर दे, उसे रजफतुन कहा। जैसे हवा है, जमीन है, पहाड़ों का वो जमीन रजफतुन ताबीर को के अंदर जो मसाइल में एक मौकफ इख्तियार किया माशरा, अगर इस माशरे के अंदर या उस मौकफ में कोई धर्म भरम कर दे आके चीज, कोई ऐसे चीजें के जो दें उस कर दें और अपने ठहराव और अपनी बका से मुतजलजल कर दें, मुर्जफून। जैसे ये करते हैं उसके मुख्तलिफ हैं, कैसे होता है नतीजा, लेकिन नतीजे को हासिल करने के असबाब क्या हैं वो मुख्तलिफ हमारे सामने आते हैं। कुरान ने किस सबब को मुर्जिफ का एक इनवान दिया है? क्योंकि माशरा, आप जानते हैं कि अगर एक माशरा मौकफ इख्तियार किए हुए है मसाइल के अंदर, या माशरा अपनी एक खास ज़िंदगी बसर कर रहा है और उस ज़िंदगी के अंदर लोगों के दरमियान एक इस्तराब और एक अजीब व गरीब से हालात ना अमनियत के बर्पा करके उन्हें परेशान कर देना, गम का शिकार कर देना, उलझनों में बर्पा कर देना, ये कहते हैं रजफा। ये माशरों के लिए रजफा कहलाएगा। जैसा कि ज़मीन का जलजला आना वो घरों और मकानों के लिए क्या है? रजफतुन। या तूफान चलते हैं तो वो घरों को, दरख्तों को, फसलों को, मवेशियों को वो धर्म भरम कर देते हैं, तो ये रजफा कहलाएगा। जो माशरों के अमन व अमान को और माशरों के अंदर लोगों के अंदर इस्तराब को, लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरह से एक उलझनों का शिकार कर दे, उन अनासिर को क्या करता है? मुर्जिफ। यहां पर पैदा होता है कि वो उन, क्योंकि यहां इसके ऊपर ये असरअंदाज होती है, यानी उसके अंदर कौन असरअंदाज होता है? वो खुद ही असरअंदाज होता है। लिहाजा जो माशरों के अमन व अमान को तहबाला करता है, मुस्तरिब करता है, लोगों को गम ज़्यादा करना, हुज़्न में, टेंशन में, ना उम्मीदी में, खौफ में डालना, जो ये अनाथ काम कर रहा हो वो मुर्जिफ कहलाएगा। लेकिन हर वो शख्स जो ये काम कर रहा है, क्योंकि इसको करने के ज़राए मुख्तलिफ हो सकते हैं, अगर प्रोपागेंडे के ज़रिए से किया जाए तब मुर्जिफ है। बस आपने इधर देखी क्यूद है कि मुर्जिफ कौन कहलाएगा? जो लोग गम हुज़्न, क्योंकि लोगों में इस्तराब मतलब है, कहाँ से पैदा हो? बस अभी हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, हमें खबर मिले कि आपके घर में फला हादसा हो गया, बस आपके बीवी बच्चे हैं, आपके वालदैन हैं, अंदर एक हमें इस्तराब पैदा हो गया या नहीं? वो इस तरह गम और परेशानी और हुज़्न इसको लेके आने वाला है या नहीं? लिहाजा हर वो खबर, हर वो प्रोपागेंडा के जो इंसान के अंदर को बात फैलाता है, प्रोपागेंडा उभरता है तो गम और हुज़्न के फिर नताइज वो क्या नताइज आए? क्योंकि हर कोई अपने गम और हुज़्न को अपने काबू में आता है, ये अक्सर बेशतर अफराद जो हैं वो उसके फिर मनफी असरात का शिकार हो जाते हैं। मसलन ना उम्मीदी एक मनफी असर है, मसलन बेजा खौफ का शिकार होना मनफी असर है। अच्छा, इसी तरीके से दुश्मन को हद से ज़्यादा बड़े पैमाने पे कवि समझने लग जाना इंतहाई मनफी असर है। ये मनफी आपने देखे तरतीब हमारे पास कैसे बनी कि माशरा चूँकि पुरसकून कब होगा? बड़ी उम्मीद से है। मसलन अभी हम ईरान में हैं और हम इस चीज़ का गहरा एतिकाद रखते हैं कि ईरानी डिफेंस सिस्टम पूरी कुव्वत और तवानाई रखता है सिहूनियों के हमलों से अपने दिफा का। यहाँ पे अब जंग के हालात आस्ता आस्ता थम रहे हैं या मुकाबला हकीकी माना पे इस सतह के ऊपर पहुँचा हुआ है कि दुश्मन ये जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन बाज़ अनासिर अंदर आए। अब लोग अंदर से जब ये तवक्को रखे हुए हैं कि नहीं, हम भरपूर मुकाबला कर लेंगे और हमारे पास इतनी तवानाई मौजूद है कि दुश्मन को अंदर असरअंदाज ना होने दें, इत्मीनान की नींद लोग सोएंगे या नहीं? सुकून से अफराद बैठेंगे एक हिम्मत और ताकत और अपने मौकफ पे कि इस दुश्मन को शिकस्त देनी चाहिए, इस हवाले से इजहार नज़र करेंगे या नहीं? अब लोगों में इस्तराब फैलाना क्या कहलाएगा? बंदा एक खबर लाए और वो लोगों में फैलाता चला जाए, और वो ये है कि दुश्मन तो बहुत कवी है, इन्होंने तो बताया ही नहीं इतना नुकसान हुआ है, इतनी इनकी बेसिस उड़ गई हैं, फलां जगह देखो अफराद जो हैं उनको शहीद किया गया है, अब तो सिर्फ रहबर की बारी रह गई है और उनको बस उन्होंने टारगेट करना और वो भी उन्हें टारगेट कर लेंगे, और इसको वो फिर इस तरीके से फिल्माएँ या दिखाएँ कि वो उस बंदे को कोई हकीकत के करीब दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर वो गम ज़्यादा हो गया या नहीं? हुज़्न का शिकार होगा। अब जब वो हुज़्न और गम का शिकार होगा तो रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है? गम और हुज़्न का तो नतीजा यही है कि नाउम्मीदी आए, खौफ आए, और दुश्मन को उसकी हद से ज़्यादा बड़े पैमाने पे कुव्वत, अहले कुव्वत वाला दिखाई दे उसे, यही उसका नतीजा जो गम और हुज़्न का शिकार हो जाए। लेकिन ये गम और हुज़्न का मुकाबला करता है और मुकाबला करके वो इस्तेकामत के साथ डटने वाली बात करता है कि मुझे अल्लाह के वादों पर यकीन है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये वादा फरमाया और इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मीआद, जो वादा करे अल्लाह उसकी वादा खिलाफी नहीं करता, और वादा इलाही है कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलूना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ना हिम्मत हो और ना गम का शिकार हो कि ना उम्मीद बैठो, चूँकि जो गम का शिकार हो जाता है वो ना उम्मीद और खौफजदा हर दो हालात तारी कर बैठता है, और तीसरा उसकी निगाहों में दुश्मन अपनी कुव्वत से कई गुना बढ़कर उसे दिखाई देने लग जाता है। इसलिए कुरान कहता है वला तहज़नू, अगर मोमिन हो यानी ईमान के आसर के ऊपर कायम हो तुम ही बरतर हो। वो कहता नहीं मुझे अल्लाह के इन वादों पर यकीन है। इस तरह के कितने लोग होंगे अवाम में, यकीनन अकलियत होगी। लिहाजा यहाँ पे प्रोपेगेंडा फिर सराहियत करने लग जाता है। जब हिम्मत टूट जाए, जब दुश्मन अपनी तवानाई से कई गुना कवि आपको नज़र आने लगे तो दिलों के ऊपर रोब छा जाता है, खौफ का जो शिकार हो जाए, जितनी बड़ी जमीयत और कुव्वत बन जाए वो बेअसर होती है। पाकिस्तान इस टाइम 25 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जो ऊपर हुक्काम बाला बैठे हुए हैं वो इस कदर खौफ ज़्यादा है, इस कदर खौफ ज़्यादा हैं कि वो अपना हाल जो है वो अफ़गानिस्तान समझते हैं। उनको बताया जाए तुम्हारा हाल लुबनान भी तो हो सकता है, हिज़्बुल्लाह की तरह फतह की सूरत में भी तो हो सकता है। लिहाजा हिज़्बुल्लाह चंद लाख भी नहीं है और वो आलमी सतह के इस्तेमार से जाके टकराती है, और ये अपने एटॉमिक पावर के साथ भरपूर कुव्वत रखने वाली जमीयत है, लेकिन जब खौफ का शिकार होती है तो करोड़ों अफराद बेअसर रह जाते हैं और चंद हज़ार या चंद सौ अफराद वो गालिब आ जाते हैं। यह आपने देखा है कि खौफ का कितना बड़ा नतीजा सामने आता है। इसलिए यहाँ पे मुर्जफून ये काम किया करते थे। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 60 में अल्लाह सुबहान तआला ने इस तबके की तरफ इरशाद फरमाया है, क्योंकि दुश्मन जंग बंदी करे ना करे उसका इस टाइम असल हथियार क्या है, वो यही प्रोपागेंडा है। और प्रोपागेंडा के अक्सर बेशतर कवि ज़राए पूरी दुनिया में वो किसके हाथ में है, सहयोनियों के हाथ में हैं। मेटा जैसे उनके हाथ में है, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इस टाइम तो सारा जिहाद मुसलमानों का उसी के ऊपर था कि चीज़ें शेयर कर दे तो जिहाद हो जाता था, तो अभी वो जिहाद भी उनसे छीन लिया तो परेशान बैठे हैं, अब करें क्या। तस्वीर लगाए तो पेज बंद हो जाता है, कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाए इधर उधर मौजूआत के ऊपर तो यूट्यूब चैनल चला जाता है, और फिर वो इस तरह लगता है जैसे जिंदान में बैठे हुए, क्योंकि सबसे ताल्लुकात ही टूट गए। ताल्लुकात तो व्हाट्सएप की और फेसबुक की एहसास पर था, तो व्हाट्सएप भी बंद हो गया, फेसबुक भी बंद हो गया, तो अब वो कहता है मैं इस दुनिया में अकेला तनहा बस एक मुल्क में रह रहा हूँ, सारे रास्ते ही बंद कर दिए। तो यहाँ पे प्रोपेगेंडा मशीनरी उसके हाथ में है, लिहाजा वो ये प्रोपेगेंडा मुर्जिफ बन के करेगा। मुर्जिफ कुरान करीम की ताबीर में फ़क़त दो तबके हैं, पहला तबका है काफिर और दूसरा तबका है मुनाफिक। कुफ्र और नफाक हर दो एक छोटी से छोटी सतह भी रखते हैं, एक सतह भी रखते हैं। छोटी से छोटी सतह में भी मज़मूम हैं लेकिन दायरे इस्लाम से इंसान को खारिज नहीं करते। जैसे तारुकुस्सलात कुफ्रन, नमाज को तर्क करने वाला, शिया सुन्नी दोनों कुतुब में ये रवायत मोतबर वारिद हुई है, जो नमाज को जानबूझ के छोड़ता है वो काफिर है, लेकिन ये वो कुफ्र नहीं है, दायरे इस्लाम से खारिज कर दें, काफिरों से मुशाबे कर देता है। लेकिन एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत और नबूवत का इनकार करें, ये कुफ्र दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। निफाक भी इसी तरह है। एक निफाक है कि जो दायरे इस्लाम से इंसान को खारिज नहीं करता अगरचे मज़मूम है, लेकिन एक निफाक है जो दायरे इस्लाम से खारिज कर दे। इर्जाफ जो है, इर्जाफ वो गुनाह है, यानी प्रोपेगेंडा मनफी करना वो गुनाह है कि जो इंसान को आस्ता आस्ता उस सतह के ऊपर लेके आता है कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस टाइम शिया अमामे वाले उलमा उन्होंने इस मकसद के लिए बिठाए हुए हैं, जैसे अल अरबिया पे आप देख सकते हैं, जैसे आपको अपने पाकिस्तान के बाद मेम्बरों पे नज़र आ जाएंगे कि ये कौन सी करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थोड़ी जालिम के ख़िलाफ़ निकले थे, वो तो जा रहे थे कूफा की तरफ अपनी फैमिली को ले के, बेचारों को घेर के शहीद कर दिया गया। इस तरह की अजीब और गरीब सी बातें सुनने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम इस आयत को अगले दर्स में मुतालिया करेंगे। आपकी खिदमत में सिर्फ ये तर्जमा आयत का पढ़ दिया जाए जिसमें कुरान करीम ने मुर्जफून का तस्करा किया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 60 में इरशाद होता है, लाइन लम यंतहिल मुनाफिकूना, अगर मुनाफिकून ना ये ख़त्म करें, वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में मरज़ है वो ख़त्म ना करें, वल्मुर्जफून फ़िल मदीना, और मदीना में जो मुर्जफ बैठे हुए हैं यानी ये प्रोपागेंडा करने वाले मुनाफिकीन हैं, लनुग़रियन्नक बिहिम थुम्मा ला युजावरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला, के अगले درس میں ہم مطالعہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والہ الطاہرین.